कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
कहने का भाव यह है कि वो जो बच्चे थे वो मनमाने कोई से दुखदाई तत्व हो पिछले जन्म के आपके, हैं बड़े होकर खुद को डक के मारे, को चोरी करे, हैं को बहु न सता दे, आप जड़के मर जाए सारे जेल में, मन इस प्रकार का कोई दुखदाई तत्व था तो परमात्मा ने उसका पहले ही फैसला आपका कर दिया, क्योंकि आपको परमात्मा ने अपना मान लिया और अपना के साथ फिर वो किसी तरह ट्रीटमेंट करे, कितना ही उसको किसी तरह रखे, उसको सुख ही देगा, दुख नहीं दे सकता परमात्मा। एक बार जींद में एक हमारा सेवक और उस घर में वो उसकी सास और उसकी वो लड़की दोनों नाम ले रही और परिवार नहीं ले रहा था, और उस लड़की के पहले दो कन्याएं थी और वो लड़के के चक्कर में लड़का हो हमारे लड़का हो वो दो होली थी जब हमारे पास आई थी, नाम लिया उन्होंने दोनों ने, क्योंकि नाम लिया, नाम लेते ही फिर उनको परमात्मा ने दया विगर्भ रहा, अब डटा ना जाता उन तय तो उन क्या हुआ कि तीन चार महीने का गर्भ था और हम एक दूसरे भक्त के वहां खाना खाने गए हुए थे, पहले गांव घर घर में सत्संग करते थे तो 200-400-500 ज्यादा आधार से सोए होंगे उस टाइम सारे का, तो वहां खाना खा रहे थे, वह लड़की और उसकी सास वहां सेवा करना रही थी उनके भगत के जींद में, तो वहां खाना हमने खाया और वो सेवा करा रही थी, उसी समय उसका गर्भपात हो गया। हमें पता नहीं के कारण हो गया, वह लड़की रोए रोए बुरा हाल कर दिया, वहां भी क्या हो गया उस पर तो बोले भी नहीं, हाई मेरा तो नाश हो गया, नौकर फिर घर ले गए उसको, हाँ फिर बताया कि जैसे ऐसे इसका वो बच्चा गिर गया, फिर वहां भी कोई बात नहीं, परमात्मा जो करता ठीक करता है, पर वह ना सुने बस वो घनी दुखी सी हो रही, वो घर ले गए। शाम ने सवेरे फोन आया अगले दिन कि जी आपकी आज्ञा हो तो डॉक्टर ने दिखा ला, कदे कोई गड़बड़ हो, सफाई ठीक ना हुई हो करवा लिया। उधर से उसकी मां को पता चला, छोरी की मां भी आ रही, और भी घर के सदस्य इकट्ठे आने लग गए, भाई जैसे ऐसे गड़बड़ होगी, आया करें सांत्वना देने, तो मैंने कहा भाई ठीक है तुम चेक करा लो। उन्हें अगले दिन वो दिन, जैसे आज का शाम थी उसे अगले दिन छोड़ के तीसरे दिन डॉक्टर का चेक कराया, डॉक्टर ने बताया कि इसका गर्भपात नहीं है, बच्चा न्यू का न्यू है, पर सह लड़की अब फिर नंतर हो थरा गजब हो गयो, अब देखो हमारा तो ऊंट के सा स्वभाव हो गया बिना ज्ञान के, ऊंट के ऊपर बाहर रखा करे ना वजन धरे जब भी आकर और उतारे जब भी आकर, उसने ना मेरा तेरा भला हो रहा बुरा हो रहा, उसको ये नहीं पता जब सामान उतार रहे हैं जब तक मैं हल्का हो सकता, फिर भी उसकी आदत बनी हुई है, तो ऐसे ही हमारा स्वभाव बन गया, परमात्मा हमें सुख दे जब भी हमने रोना हमारा, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं रही परमात्मा वाली, ज्ञानहीन बना दिया नकली संतों ने। अब परमात्मा कुछ भी कर सके था, वह लड़की अपने आप अबॉर्शन कर दी थी और रोकर साका मचा कर परमात्मा बोले ले उल्टी फेर ले, वह नो किनो पाई फिर वह लड़की फिर वह नो किनो दे दी। और वो वहां मालिक ने कर दिया था उस बेटी का आत्मा का मनमाना और जगह की तय व्यवस्था करते। फिर वो कहने लगी कि इसका अबॉर्शन करावाएंगे हम तय। मेरे से पूछा मां खबरदार जय हम तो कहीं नहीं इसका ऐसा जीव हत्या करण की नालायक कहीं की। उसकी सास बोली खबरदार जय तन सोची भी यह बात स्त्री बेटी ने मैं पाल दूंगी अपनी न्यारी तू यह बकवास मत करे। तो कहने का बाबा तीसरी लड़की होगी। फिर भी वो पहला धक्के खा लिए थे सारा छोरिया के लिए, वो फिर डटे रहे। फिर मालिक ने लड़का भी दिया उनके, फिर उनका दृढ़ विश्वास हुआ। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा अब जो ऑपरेशन करेगा उसमें आपना ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप ज्ञान कम सुनते हो, संसार की ज्यादा सुनते हो, इसलिए आप विचलित हो जाते हो। तो अब जो प्रसंग चल रहा था कि जो पुण्य आत्मा ईब आपके घरों में आवेंगी वो सटोक है ऊपर मिनी सतलोक है यहां पर एक, वहां पर आपको परमात्मा ने बीज रूप में रखा उन पुण्य आत्माओं को। अब आपके घर में आने लग रही है बच्चे छोटे छोटे, कोई तो 10 से 15 दिन का आले है, क्यों उसके संस्कार भगवान की पुण्यात्मा है, कोई बेटा है या बेटी, और कोई 20 दिन का कोई 15 दिन का, और उनके कितने पुण्य भाग सीधे परमात्मा की जहां अमरवाणी चलती हो सत्संग होता है वहां रहे वो ना, तो बुढ़िया करा कित ले जाओ उड़े कुत्ते मुते हैं वहां माथा टिकवाओ उनका दूने उन मंडिया पर करा कित कर्म बिगड़वाओ सारे। तो ये जो पुण्यात्मा अब आपके घरों में आवेंगी और परमात्मा फिर भी आपको कोई ऐसी हो रही है गड़बड़ उसको होने दे। परमात्मा करता है उसको होने दे, अब उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करे। न्यू का परमात्मा जो आपकी रजा, हम तो अज्ञानी हैं हमें ज्ञान नहीं, प्रभु आपको जो हमारे हित में हो वो करना, और वो ही करा करे भगवान। अपनी जीवात्मा को ये परमात्मा दुखी नहीं कर सकता। अब जैसे कोई कांटा लग गया है तो उसको निकालने में थोड़ी बहुत पीड़ा तो उसमें भी होती है, उस पीड़ा को सहन कर लेने से सुख हो जाता है। दो इसका फॉर्मूला है, द्वार धनी के पड़ार है धक्के धनी के खावे और 100 काल जख जोली पर द्वार छोड़ दी जा। अब परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को सत्य भक्ति करवा के अपने निज स्थान पर ले जाते हैं। प्रत्येक कलयुग में यही वो पीक टाइम होता है और इस समय में इसको बिचली पीढ़ी बोलते हैं। इस बिचली पीढ़ी में लाखों करोड़ों अरबों जीवों को परमात्मा प्रत्येक कलयुग में पार कर ले जाता है। वो स्वयं आते हैं या हमारे जैसे कोई दास को भेजकर अपनी ही शक्ति से हमें मीडिया बनाकर अपना कार्य अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा ना आए होते और उन्होंने वो लीला भी की होती जो भगवान किया करते हैं, जिनका वेदों में प्रमाण है, तो हम कैसे पहचान सकते उस परम पिता को। अब उसके लिए कि परमात्मा सतलोक में रहते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं। अब मैं कहता रहूं आपको कोई असर नहीं होगा, कबीर साहब की वाणी भी आपको दिखा दूं तो भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्यों नहीं पड़ सकता? क्योंकि हमारे कोई नज्ञानी ऋषियों और गुरुओं ने हमारे हृदय में यह रंग रंग रखा था कि कबीर जी अशिक्षित है, वो वेदों से अपरिचित है, और वेद और गीता और पुराण जो बताते हैं वो सत्य है, वो सच्चा है। अब वेद और पुराणों में वही बात मिल जाए जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताई थी तो परमात्मा को पहचानना कति आसान हो गया, आसान हो गया। अब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले बताया करते ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, लेकिन हम परमात्मा के शत्रु हो गए इन झूठे गुरुओं ऋषियों के उस झूठ को आधार बनाकर कि कबीर जी अशिक्षित हैं और ये वेद और गीता पुराणों को नहीं जानते। अरे उन वेद और गीता पुराणों की आवश्यकता नहीं, वो तो सृष्टि रचनहार हैं, उन्हें तो ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ इनके पिता के भी मूल जड़ का पता ये कैसे उत्पन्न हुआ था। क्योंकि दादाजी अपने पुत्र और पौत्रों की जो ना खूब अच्छी तरह उत्पत्ति बता सकता है, लेकिन पुत्र पिता की उत्पत्ति नहीं बता सकता। तो पुत्र ये काल ज्योति निरंजन है, परम पिता परमेश्वर कबीर जी का, तो इसको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं। और परमेश्वर कबीर जी ने इसकी जन्म पत्री पूरी खोल कर रख दी हमारे सामने, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश की 600 वर्ष पहले, और आज उसका प्रमाण हमारे पुराण और वेद बता रहे हैं। देखिएगा श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण, ये है देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंध पृष्ठ 123 अब विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में बता रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम तो नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है। केवल तुम ही नित हो, नित माने अविनाशी, जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियमानुसार का अर्थ है कि हम केवल वर्क डन दे सकते हैं, जिसका जैसा भाग्य में वैसे ही दे सकते हैं, उससे भिन्न कम और ज्यादा हम नहीं कर सकते। अब इससे चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा इनकी माता। तो तीसरा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, ये तीनों गुण यही है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जिसका जैसा भाग्य है उतना ही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब परमात्मा 600 वर्ष पहले हमें बताया करते थे, तो कबीर जी को हमने एक अशिक्षित मानकर ये सोचकर इनकी अमृतवाणी को रद्दी की टोकरी में वेस्ट बेसन में डाल दिया बैकेट में, और अब ये लाल कुरडी पर डाला हुआ था, कूड़े में डाल रखा था। इस दास को परमात्मा ने पारखी बना दिया, जोहरी बना दिया, और इस दास ने इस लाल की परख की और आपको पारखू बनाया। अब आपको पारखू बनाने के लिए, पारखी बनाने के लिए, परखने वाला यानी जौहरी बनाने के लिए रह रहकर ये सदग्रंथ आपको दिखाए जा रहे हैं। और पुण्यात्मा परमात्मा पाने कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही आसान, सबसे आसान काम परमात्मा की भक्ति है। लेकिन इन अज्ञानी अनाड़ियों ने हठ योग कर करके अपना भी जन्म बिगाड़ा। बड़े बड़े तप करे, जंगल में जा खड़े हुए कि तो धुने लाकर अग्नि चारों तरफ लाकर खड़े हो गए कि तो उल्टा सिर करके ऊपर न पैर तड़े न सिर सिरासन लाके कोई झूल डाल के उस पर खड़े होकर तपने लगे से मोटे मोटे पैर सूज जा और दुनिया नो देखो भगवान बाबा जी के तो कमाल है भाई, सारा दिन खड़ा रहता है, रात में भी नहीं सोता, बस पींग पर थोड़ी सी लटके ले लेता है। ओहो हो जो मिलेगा भगवान भाई तो परमात्मा ही पावेगा। अब परमात्मा कहते हैं डेरे, कहते हैं डिंब करें डूंगर चढ़े और ये ऊंचे से स्थान पर बैठे अगर जिस तरह सब नजदीक जाए और मेरे पास आने लग जाए ये फंसा लू अपनी जाल में। डिंब माने पाखंड करें दम्ब और डूंगर चढ़े ऊंचे स्थान पर बैठेंगे अंतर जी नी झूले और जग जाने बंदगी कराइए बोवे सूल बबूल। दुनिया जनता तेने सोचा बोली कि ये तो बड़े महात्मा है और साधना कर रहा है, वो तो अपने कर्म फोड़ रहा था, ये साधना ही नहीं थी परमात्मा की। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमात्मा की भक्ति एक सतनाम है श्वास उश्वास से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उस बालक के नाम न भूल नहीं, क्योंकि सांस भी आवेगा चाहे हम खाना खा रहे हैं चाहे चल रहे हैं या किधर बैठे हैं सफर कर रहे हैं तो श्वास आएगा तो उस पर ध्यान रखना है भाई हम कौन सा मंत्र कैसे जाप कर रहे हैं, ये कमाई आपकी बनेगी। और जो प्रथम मंत्र आपको दिया है वो भी आप चलते फिरते उठ कर बैठते किसी तरह उसका जाप करते रहिए। तो ऐसे आप अपना दैनिक कार्य भी करिए और परमात्मा का जाप भी करिए, ऐसे प्रभु मिलेगा। लेकिन परमात्मा पाने के लिए परमात्मा पर ये हमें दृढ़ होने के लिए ये ज्ञान की आवश्यकता है कि हम जो साधना कर रहे हैं यह सच्ची है यह सत्य है। और जब हम ये पूर्ण रूप से समझ लेंगे कि हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल 100% सत्य है तो फिर पा गया भगवान मार्ग सही हमें दृढ़ हो गया कि इस रास्ते जाने से पर हमारा घर आएगा। तो जितना भी हम चलेंगे जो जितना स्पीड खींचेगा जिस भी तरीके से चलेगा वो उतना ही जल्दी पहुंच जाएगा, यानी फिर भी उसमें उस सही रास्ते पर चलने वाला कोई लुल्ला लंगड़ा है वो भी पहुंच जाएगा, रास्ता ठीक होना चाहिए। तो ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटके एक परमात्म तत्व पर उस पूर्ण परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तुझे भगत बनेगा यानी भक्ति तेरी तुझे भक्ति मिलेगी तब तुझे भक्ति प्रवेश होगी। नहीं तो कोई भ्रमित कर देगा ये ठीक नहीं मंत्र ये ठीक है बोली आत्मा उसको छोड़ उसको लग जाएंगे। अब नहीं छोड़ सकते आप, ऐसा ज्ञान में रंग दिया जाएगा और मोक्ष बहुत ही आसान है। तो कहते हैं तब तो तू भक्त बनेगा। तो ऐसे पुण्यात्माओं जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा कि हम जो साधना कर रहे हैं ये बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है फिर तो मोक्ष हो गया 100% होगा गारंटेड होगा। ना होता तो परमात्मा ने आने की क्या आवश्यकता थी, यही ज्ञान बताने की आवश्यकता क्या थी। और जैसे आपको कथा सुनाई थी एक लोग बोला मैं कदे अकेला च पहुंच जाऊंगा कोई भी ना पावे मेरा जी ना लागे मैं ना करूंगा भक्ति। जब एक विचार करने की बात है परमेश्वर कबीर जी परमेश्वर है और उसने उससे जो संत उनके संपर्क में आए जिनको साक्षात्कार हुआ जिनको परमात्मा आकर मिले सतलोक तय उन्होंने सचखंड देखा फिर आके गुणगान किए और उनके अनुयायी इतने बने हुए बहुत गने। तो इन सब ने कोई झूठ नहीं बोला, इनके झूठ मान ले हम सोचे ये वैसे गपोड़ पेल गए थे इनका उद्देश्य झूठ बोलने का क्या था, कोई ऐसे वैसे नहीं थे ये। तो ऐसे हमने अपना विश्वास करना पड़ेगा कि जैसे परमात्मा ने बताई फिर आंखों देखे संतों ने जो स्थान बताया वो सत्य है। अब देखो पुण्यात्माओं लड़की के लिए पिताजी दादाजी या कुल का व्यक्ति कहीं जाकर के इस लड़का देखकर आता उसका वर ढूंढता है खोजता है और वो आकर के अपने घर पे चर्चा करता है कि ऐसा लड़का है इतनी शिक्षा ग्रहण की हुई है उसका इतनी जमीन है या इतना उसका मकान है ऐसा कारोबार है। और वो लड़की को भी पता चलता है कि ऐसे ऐसे लड़का ढूंढा है उसका ऐसा ऐसा कारोबार। तो पिता तो लड़की को 100% विश्वास होता है कि मेरे पिताजी जो कह रहे हैं झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही जो हमारे पिता ने आके हमें बताया और उसी कुल के लोग यानी संत आदरणीय गरीबदास जी आदरणीय नानक साहेब जी आदरणीय दादू साहेब जी आदरणीय मलुकदास जी आदरणीय गीसादास जी आदरणीय धर्मदास जी साहब ये सभी वही बता रहे हैं कि वहां सतलोक में पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर जी है और ये वही भगवान है जो बनारस में आए थे दानक रूप में, जुलाही रूप में। हम सुल्तानी नानक तारे दादो को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत, सतलोक में देखने के उपरांत कहा था कि जिस परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया, गरीबदास जी छुड़ानी वाले जिला जज्जर हरियाणा में मेरा उद्धार किया, अब्राहिम सुल्तान अधम मुसलमान बादशाह था एक बलक शहर का, उसका उद्धार किया और नानक जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं उनका उद्धार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादो को उपदेश दिया, जात जो लाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। कि उस परमात्मा ने कोई समझ नहीं सका, बनारस में वो काशी में कबीर दुलाहा जो दानक था ये वही पूर्ण परमात्मा है। आंखों देखा नानक साहेब ने गुरु ग्रंथ साहेब में, नानक साहेब जी की अमृतवाणी महला पहला की वाणी है प्रश्न नंबर 24 पे, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, ये धानक रूप रहा करतार। आवाज लगा लगा के बोली के ये बैठा धानक रूप, ये धानक रूप रहा करतार, ये दुल्हा रूप में बैठा, ये है पूर्ण परमात्मा। क्योंकि नानक साहेब जी को बेई नदी से परमात्मा जिंदा रूप के अंदर डुबकी लगाई, जैसे नानक जी को वहीं से उनकी आत्मा और शरीर को बाहर रख दिया ठा के, आत्मा को सतलोक लेकर गई और शरीर को बहुत दूर जाकर के रस्ते में परमात्मा ने कहीं रख छोड़ दिया। आत्मा को लेकर गए सतलोक सचखंड में, वहां देखा परमात्मा कबीर जी को अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सिंहासन कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान। और फिर कहा परमेश्वर ने कि प्यारी आत्मा मैं बनारस में धानक का काम करता हूं, जुलाई का कार्य करता हूं, वहां आ जाना और सतनाम दूंगा तुझे, सतनाम का जाप करना तेरा, तब मोक्ष होगा। तो नानक साहेब जी को तीन दिन तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। नानक साहेब जी जो वापस आए, घर छोड़ दिया, नौकरी त्याग दी, बनारस पहुंचे, वहां परमात्मा को देखा जुलाहे का कार्य करते हुए, तब वहां आवाज लगा लगा कर शोर मचा दिया उस प्यारी आत्मा ने, जैसे किसी ने जिस चीज की वस्तु और ने कहा आ जाओ यो मिल गया, यो मिल गया भगवान, क्योंकि उनको तो चाह थी भगवान की। तो वहां आवाज लगा कर कहते हैं कि फाई सूरत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, कहते यो ये दानक रूप रहा करता रे, ओहो फाई सूरत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बहार, ये धानक रूप रहा करता रे। ये ठगवाड़ा यानी कहते हैं ये अपने आप को छुपा कर धोखा देकर सबको ये बैठा भगवान, ये दानक रूप में बैठा मालिक। तो उस समय परमात्मा की उस नानक जी की कोई नहीं सुने, आसपास के जुलाए इकट्ठे हो गए, कहने लगे देखियो पंजाब तो आके एक आदमी और पागल हो गया, इसने इस नीरू के बच्चे को परमात्मा बतावे है, कोई नहीं सुने, अन्यों कहियो तो मेंटल आ गया। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि आप अभी इसको गुप्त रखो, अपनी भक्ति करो और ये सतनाम अभी किसी को नहीं देना मेरी प्यारी आत्मा, ना तो बात बिगड़ जाएगी। ये काल के दूत इस सच्चे नाम से परिचित होकर ये नाम देने लग जाएंगे और इनके नाम देने से मेरी आत्माओं को लाभ नहीं होगा, और पिछली पीढ़ी जब आएगी हम भिन्नता नहीं बता सकेंगे। तो नानक साहिब जी ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया और किसी भी अपने अनुयायी को सतनाम का दान नहीं किया। पांच नाम का दान करते थे, वो प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता उसमें पहला और लास्ट छोड़ के ये बीच के पांच नाम हैं। ये पांच नाम गायत्री गए भी आत्म तत्व जगावे, इस इन मंत्रों के जाप से आत्मा में और ज्यादा दृढ़ता आती है, परमात्मा की तरफ तड़फ बढ़ती है और संसारिक सुख आपको इस मंत्र से प्रारंभ हो जाते हैं। और जब संसारिक सुख होते हैं तो आपको परमात्मा की लगन भी बढ़ती है, कहा मुझे सुख हुआ, मेरे घर में ये सुख हुआ, ये बीमारी कट गई, तो फिर परमात्मा पर दृढ़ हो जाते हैं। तो ऐसे इस पांच मंत्र के जाप को अभी तक देना था और अब ये पूरा खजाना खोलना, तीन मंत्र का जाप अब दिया जाएगा। अब परमात्मा ये कहते हैं कि वेद हमारा भेद है और मैं वेदों में ना ही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। अब सबसे पहले ये बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी के बारे में, परमेश्वर कबीर जी के बारे में, यानी परमेश्वर के बारे में वेद क्या बताते हैं, वो कहां रहता है और कैसी क्रिया कैसी लीला करता है, तो फिर हम परमात्मा कबीर जी को पहचानने में देर नहीं करेंगे। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर आपको दिखाएंगे, ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षिदानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाषे महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये वैसे ये मंडल दानंद जी का अनुवादित अनुवाद नहीं है, इसका तो ये वैसे फीत लाया करते, इसलिए बिक जाया करते। ये अन्य एक सातवेलकर संत ने, दो ऋषि ने अनुवाद किया इसका। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसका भी थोड़ा निर्णय करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है समय पर इसका समाधान नहीं हुआ तो मन में शंका रह जाती है। ये 9वें और 10वें मंडल का 7 से लेकर 10 मंडल, 7, 8, 9, 10 ये मंडल दान जी ने अनुवाद नहीं किए हुए, लेकिन इसकी मोहर ये अवश्य लगा देते थे, इसका नाम लिख देते थे, जिस कारण से वेद बिक जाया करते महर्षि के नाम थे। और महर्षि दानंद को तो कहकर नहीं बेरा था, वेदों का कोई ज्ञान नहीं था इसको, लेकिन संस्कृत जानता था। सुख की फोकट में मांगनी बनगी, बोले आदमी थे, ये पढ़ा लिखा शिक्षित यानी संस्कृत जानने वाला पांडा था, पंडित, और वो पढ़ने वाले काम कर गया जो और कर रखे थे। इसने उसी वस्तु को एक और बोतल में डाल दिया जो सुंदर दिखा थी और सत्यार प्रकाश बना दिया, और था वो एक उससे भी गिरा हुआ ज्ञान है, जो अन्य ऋषियों से भी गिरा हुआ ज्ञान था इसका। अब देखो ऋग्वेद भाषा भाषण, इसने क्या बताया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती, तो मंडल 1 से लेकर 6 तक किया है अनुवाद, और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने मंडल नंबर 7 से 10 तक किया है, यानी इसके किए हुए को किसी ने नहीं छेड़ा, उससे आगे किया फिर इसने। ये देखिए कहां से प्रकाशित है, ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दान सरस्वती, संपादक हैं दानंद अर्पण, विश्व मानवोत्थान परिषद, ये प्रकाशक है, परिषद पंजीकरण 46/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। और ये कहां से छुपा है, मुद्रक है कंप्यूटर डाटा सर्विसेज, नई दिल्ली, ये इनके दूरभाष संख्या नंबर है। हमें इसे इतना लेना था कि ये झूठ भी नहीं बोला करते यार, ये समाज के आचार्य, इन झूठा की झूठ भी पकड़ी जाएगी तब हमारा दिल अटकेगा कि सचमुच सारे नकली थे। अब इन्होंने इस ऋग्वेद 9-10 मंडल पर दानंद जी की मोरला रखी है, जबकि दानंद जी ने तो 1 से 6 अनुवाद किया। फिर भी हमने अपना उद्देश्य देखना है, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, इसका मंत्र नंबर 26, ध्यान से देखना, क्योंकि आप जी को जैसे बालक ने पढ़ा करे ना, बच्चा पहली कक्षा में एक वर्ष तक उसको समझाते हैं, बोल ए फोर एप्पल, बी फोर बुक, सी फोर कैट, यानी रोजाना यह रट्टा लगा दे, जब जाकर उसके हृदय में वो वचन वो शब्द परफेक्ट होते हैं, उसके हृदय में दसते। ऐसे ही आज आप प्रथम कक्षा के बच्चे हो, इसलिए आपको बार बार ये वेद और गीता और पुराण ये बहुत दिनों तक आप रटाए जाएंगे, तब आप इससे परिचित हो गए। अब देख ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का 26 मंत्र है। इसमें क्या अनुवाद किया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, सब संकटों का नाश करता है और उसके सब रास्ते खोल देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को निर्णजम माने रूप आकार को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का शरीर सतलोक में बहुत तेजो में है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी एक रोमकूप में है, एज इट इज वो आ जावे तो यहाँ किसी ने दिखाई नहीं दे, सब की आंखें बंद हो जाए, इसलिए सरल करता हुआ हल्का तेज पूज का रूप बना के वो यहाँ आता है, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, वो इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, कवि कोई भी सर्वज्ञ आज तक नहीं हुआ, भगवान ही हो सकता है। तो यहाँ कबीर अतो तो यहाँ हम इसको कबीर देव लिख दें, वो कबीर देव है, चाहे इसका अर्थ तो कुछ भी कर ले हम, यो कबीर देव है यहां लिखना चाहिए हमने कबीर देव। अब जैसे ये यजुर्वेद है, पुण्यात्मा आप जी ने यह पढ़ाई कति घोटनी पड़ेगी, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी स्मारक की, तब आप भक्ति के योग बने रहोगे, ना तो कोई भी आपको डामाडोल करके उसी गड्ढे में फिर डाल देगा जहां से मुश्किल से निकाले गए हो। ये देखिए यजुर्वेद, अब इस यजुर्वेद में ये महर्षि दानंद द्वारा ही छपा है, अध्याय नंबर 36 का श्लोक नंबर 1 ये देखिए, 36वां अध्याय है इसका, ये मंत्र है, इसमें ये यजु शब्द है, रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, तो इस यजु का अर्थ यहां यजु का अर्थ करते हैं यज्ञ सतुता, इसका अर्थ होता है यज्ञ सतुतियां को यजु बोलते हैं, और है ये यजुर्वेद के बारे में, तो यहां अनुवाद के समय महर्षि जी ने सही किया है, ये यजुर्वेद का यहां यजु लिखा है ओनली, जो मूल संस्कृत में यजु है, ये यजु, इस यजु को एज इट इज ब्रैकेट में लेकर यहां लिख दिया यजुर्वेद, तो इससे आसानी से समझागा कि वो यजुर्वेद है, और इसका अर्थ कर दे यज्ञ सतीतियों यज्ञ सतुतियां, यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियां, अगर यहां लिख देते यज्ञ सतुतियों को प्राप्त हो तो यजुर्वेद यहां लिखना पड़ा, यजुर्वेद ऐसे ही लिखना चाहिए था। तो ऐसे ही यदि कवि का अर्थ इन्होंने कबीर लिखना चाहिए था, कबीर देव, चाहे आप उसको कवि भगवान कह रहे हो तो कबीर देव कहना चाहिए, कबीर देव लिखना था यहां पर, वो कबीर देव है, वो कवि भगवान, नो सोच लो कवि भगवान है, तो हम उसको कबीर देव कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, वेदों में कबीर देव, हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को हम वेद बोलते हैं, और जैसे किसी का नाम कर्मवीर है हम कर्मवीर बोलेंगे उसने, ऐसे हमारे लोकल लैंग्वेज में है यो, तो हम कबीर देव को कबीर देव कहने लगे, देव माने परमेश्वर, तो हम लिखने लगे कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर कम कबीर रह पूरा लिखन लगे अपनी साधारण भाषा में, जैसे टूटी फूटी लिखा करते, तो उससे ये कबीर देव कबीर नाम पक गया, उस कबीर देव का नाम हमने कबीर देव का नाम कबीर बना लिया, तो हम कबीर ही पक गया, कबीर ही कहते हैं, तो वेदों उसे कबीर देव कहा, कवि। आप देखिए फिर देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने भक्ति, साधना अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ यानी उनके पापों का नाश करके और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का रूप बनाकर अन्य रूप धारण करके करता हुआ वह कांति में वो तेजो में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव है। वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी जैसे बिजली चमकती हुई एक सेकंड में आ जाती है करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को प्राप्त होता है। आगे देखो 27वां प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, इसका अर्थ तो कुछ और बनता है भावार्थ या वैसे अनुवाद किया उन्होंने, जो नाना रूपों में स्थिति को लाभ करे। इसका अर्थ यह है कि वो परमात्मा ना जाने कितने रूप धारण करके आता है और वे परमात्मा को प्राप्त होती है। प्रकाश पुंज परमात्मा तेज पुंज का रूप दे धरकर, तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विधम को भेंट ही, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में ब्रह्म वेदी में लिखा है। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा धूलोक के और तीसरे भाग पर विराजमान है, पृष्ठ माने हिस्से पे, वो तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और प्रकाश रूप है, उसकी बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती है। ये विषय हो गया कि वो परमात्मा एक देशीय है, धूलोक में रहता है, वो तीसरे पृष्ठ पे वहां परमात्मा विराजमान है। आगे देखिएगा, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का ही सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2 और 3 में कति स्पष्ट हो जाता है परमात्मा साकार है और किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र यहां से शुरू होता है 82 यहां से और ये इसका प्रथम मंत्र है। जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी सृष्टि रचने वाला परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों को के हरने वाला पाप नाशक वह राजीव राजा के समान राजीव राजा के समान दशम दर्शनीय है, देखने योग्य है और दिखाई देता है, साकार है और पृथ्वी लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को श्रेष्ठ वर्णीय यानी श्रेष्ठ आत्माओं को जो दृढ़ भक्त हैं यानी पक्के भक्त हैं उसके उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको उनके ऊपर कृपा करके वहां उनको आकर मिलता है। और फिर है जिस प्रकार विद्युत सदे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है अपने आत्मा, जैसे पहले कहा करते भाई एक कांसी होती थी, कांसी धातु जिसके थाली बेले बना करते, तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग का बता करते हैं माता पिता दादा दादी कि अभी बिजली आसमानी बिजली या तो कांसी के बेले पे पड़ेगी, कांसी के धातु पे, या काले सांप पे आके गिरती है, यानी जैसे वो बिजली अपने ही जिस पर उसने जाना है, जहां पर वो उसका सजातीय है यानी जिस पर उसका अट्रैक्शन है उसी पर जाती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन्हीं प्यारी आत्माओं को मिलता है जो जिसको उन्हें मिलना चाहिए, वो दृढ़ भक्त हैं तो स्वाभाविक कहते हैं वहां जैसे वह बिजली इतनी सपेटते हैं और अपने उस स्नेह वाले जिससे उसका उसका लगाव है जिसपे वह गिर सकती है, कहते उन उनको गिरती, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को ही उन दृढ़ भक्तों को आकर सतलोक से बिजली जैसी गति ते बहुत तीव्र तीव्र जैसे पहुंचूंगा क्षण एक में अपने जन के हेत और हिरणा कुछ उदर विदारिया रावण मारा खेत यानी जब श्री रामचंद्र जी के बस का नारा था रावण कति छक्के छूट लिए थे, जब परमेश्वर ने आके उस काल को उस रावण को खत्म किया था, और बहाना क्यों कहते हैं करा करावे साइया मन में लहर उठा दा दो शरदर जीव के आप बगल हो जा, तो सब क्रिया मालक सभी क्योंकि जब सब दुखी हो जाते हैं तो उस परमात्मा को याद करते हैं, और वो अगर पुण्य आत्मा उसका कोई पुण्य संस्कार शेष है तो प्रभु आकर उसकी रक्षा करता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत ही पुण्य आत्मा है, हमारे से तो करोड़ों असंख्यों गुना पुण्य आत्मा है, लेकिन ये ठगी काल के ये फसगी काल के भी इनकी कति रेल बना के इनको कति खत्म करेगा, इनकी भक्ति को बना दिए तीन लोग के प्रभु, फिर ये भी मरेंगे और जीरो हो जाएगा इनका पुण्य, फिर 84 लाख में ठोक देगा। तो इनसे आप 100 गुना अच्छे 1000 लाख करोड़ गुना अच्छे हो जो आज इस युग में जिनको मानव जन्म प्राप्त है और ये भक्ति मिलगी, ये तो यही चक्कर काटेंगे और तुम सतलोक जाओगे जहां पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जो सुख नहीं है आपके चरणों में वहां पड़ा रहा करेगा। आपने देवी भागवत 28 पृष्ठ में पढ़ा था कि विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं कभी तो कठोर तप करता हूं, फिर बैटरी चार्ज करके राक्षसान मारूं, मैं सारी उम्र नहीं लग गया हूं ऐसे लगा रहता हूं, कभी थोड़ा बहुत सौभाग्य हुआ समय मिला था 2 घड़ी अपने घर चला जाता हूं लक्ष्मी के पास, ना तो मैं न्यू डले डू, यानी कितना दुख है क्या सुख है भगवानों को। परमात्मा कहते तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेक हो, और सच कहूं तो जगनी मान ने झूठ कही ना जाइयो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाइयो। अब ये बातें कबीर परमात्मा की अमरवाणी ईव सच्ची लगेगी हमने, क्योंकि प्रमाण साथ मिल रहे हैं कितने सुखी हैं यहाँ के भगवान, और फिर हम के इंतजार क्या आशा रखें यहाँ के सुख, यहाँ सुख मिलेगा, सुख भी देगा तो कबीर भगवान देगा आपको ना, ये सुख नहीं दे सकते, ये तो दुख दुख दे सकता है ये काल। तो अब बबूल के पेड़ के आम कहां से लगेंगे, वो तो कांटे दे सके हाथ का लगा, वही जो भी उसको छुएगा पहले कांटे उसका स्वागत करेंगे। तो इस काल के लोक में तो पहले दुख है दुख होंगे, और परमात्मा कबीर जी जो है ये समझो आम का पेड़ है, कांटे नहीं होते उस आम के पेड़ पे, मधुर फल और शीतल छाया, सुख ही सुख मिलता है। तो अब क्या देखिएगा, वो परमात्मा अपने दृढ़ पर वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं, एक तो इसी से दो गया परमात्मा साकार है, एक से दो लिया कि वो एक देश स्थान पर रहता ऊपर द्यूलोक में सतलोक में, और अपने दृढ़ भक्तों को मिलता है पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, और जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे बिजली अपने जिससे उसका लगाव है उन्हीं को उन्हीं पर आकर गिरती है, तो ऐसे ही परमात्मा भी अपने इन प्यारी आत्माओं को आकर उनको जिनसे उनका लगाव है कि ये मेरे काम न कर सकते हैं, आगे ढंडोरा पीट सकते हैं मेरा, ये डगमग नहीं होंगे संसार से, उनको आकर के अपना वो खजाना खोलता है। आगे देखो वो किस लिए आता है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का ये मंत्र 2 है, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो उन महात्माओं को संतों को, और अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की तरह बहुत गति शीघ्रता से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, यानी जहां परमात्मा की चर्चा चलती है वहां पर प्रभु आ जाते हैं। आप कबीर देव हैं, इन्होंने फिर अर्थ कर दिया कवि का सर्वज्ञ हैं, हम यहां लिखते हैं आप कबीर, आप कबीर देव हैं, कबीर देव हम कबीर साहब बोलते हैं, आप कबीर साहब हैं। यहां देखिए ये कवि ऊपर आधार ला रखे कबीर वेधस्या, और वेदस्य का मन उपदेश करना, कबीर देव उपदेश करने की इच्छा से आप महान पुरुषों को प्राप्त होते हो, हे कबीर देव यहां लिखना चाहिए था, हे कबीर देव आप उपदेश यानी ज्ञान देने की दृष्टि यथार्थ ज्ञान देने की दृष्टि से आप यहां उत्पन्न प्रकट होते हो, आप कबीर देव हैं, अच्छा आगे देखो तीसरे में, तीसरे मंत्र में पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए यानी वहां से चलकर आप सर्वव्यापक नहीं आप है माने आप स्वयं गतिशील होकर वहां से चलकर विराजमान होते हैं। बस इतना ही काफी हमने यहां से। अपने आत्माओं परमात्मा साकार है और वो स्वयं ही आकर के यहां अपने ज्ञान देने के उद्देश्य से पुण्यात्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान देकर के अपने से परिचित कराता है। अब और देखना प्रमाण, कितने प्रमाण है परमात्मा सह शरीर है और वो कबीर है ये देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का ये वही ऋग्वेद है, ये वही ऋग्वेद है जो सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से प्रकाशित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और यहां देखिएगा इसका मंत्र नंबर 8 में ये स्वयं अनुवाद करते हैं उस पुरुष को उस परमात्मा को। देखो यहां तक तो ये इव देखो जहां ये विचलित नहीं हुए वहां तो ये परमात्मा की महिमा करते रहे, हे परमात्मन है? और हे परमात्मन और इसमें चौथे में भी पांचवें में भी हे परमात्मन और छठे में छठे मंत्र में भी हे परमात्मन। और जहां ये विचल गए दानंद की थ्योरी के विरुद्ध वेद में मिल गया तो इव लागे उस पुरुष को परमात्मा ना लिखा या देखो उस पुरुष को उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब देख पुण्यात्मा परमात्मा की एक एक बात सच्ची। कहते हैं धर्मदास जी ने पूछा परमात्मा आप यहां कैसे आए से गंदे लोक में कबीर जी से, हम इतने निकम्मे इतने नीच आत्मा आपको छोड़कर यहां फंस गए इस नालायक के यहां के, आप कितने दयालु हो आप फिर कैसे आगे मेरे दाता हमें संभालने के लिए। तो कहते हैं भाई ये मेरी आत्मा है और ये जब जीव यहां आगे इनके पुण्य कम हो गए अब हाहाकार माच रहा है सारी आत्मा दुखी, किसी का कोई कष्ट है किसी का कोई कष्ट है और भाई इन परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया यहां आने के लिए कि इनको सुख दूं इनको सच्चाई बताऊं अपने बच्चों को कि अपने का दुख अपने अनुभव करे न तो दुनिया में रहे पर किसी का दर्द नहीं होता शांत होना वेशक देने चले जा जब खुद चोट लागे जब दर्द हो अपना अपने का उकचुक होती है। हम कबीर जी की आत्मा है सभी, ये सभी प्राणी चाहे कोई पशु बना है चाहे पक्षी चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश बना है चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी मजहब में उत्पन्न है हम एक पिता की संतान है उस कबीर देव की है और उस पर ही हमारा दुख देखा नहीं जाता। ठीक है बालक तो अनजानपने में नाला की गलती कर देते हैं पर माता पिता उनके लिए भटकते ही रहते हैं तो हम तक काल की शराब पी कर भी यहां दुख पा ही रहे हैं पड़े हैं सड़ंगे में। मात पिता का हर प्रयत्न रहता किसी प्रकार इसकी नशा उतर जा अरे अपने घर चल रहे इसने नुवावा दुआवा साफ करें सुख दे अच्छी तरह रखे हैं। तो ऐसे स्थिति आज हमारी हो रही है हम इस काल के इस गंदे सुख न झूठे सुख को सुख मान के यहीं इसी में लटपट रहते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि उस परमात्मा को यहां आने के लिए ये उग्र गतियां ऐसे इस प्रकार का जो माहौल ही बन गया आग लगने को हो रही है कलयुग में माया माया दिखा सबने क्योंकि भगवान का डर रहा ना भगवान का ज्ञान रहा नहीं आत्मा भोली आत्मा दूने पाप कमा रही है और कोई सुखी नहीं। तो प्रभु ने यही तरीका अपनाया कि इनको ज्ञान दें और ज्ञान दे के वो सुख भी दें जो जिनकी इनको चाह है और फिर जब सुख हो गया फिर ये मेरी बात भी सुनेंगे। अब देखो आप यहां आते हो, आते आपको परमात्मा अवश्य राहत देगा, गारंटीड बात है। जो हृदय साफ से आएगा, जो दोगले मन से आओगा तो ये नहीं सुनेगा। और फिर आपको सुख होंगे, आपका 1 लाख में काम नहीं होना था और आपका फ्री में कर दे भगवान, 10 लाख में नहीं होना था और वो फ्री में कर दे, तो फिर आप डटे नहीं डट सकते वहां पर। यहाँ आओगे और फिर यहाँ आओगे तो फिर आपको ये रंग भगवान का चढ़ाया जाएगा या गुट्टी पिलाई जाएगी रह रह के, तो आप फिर दृढ़ हो जाओगे। तो इन उग्र, अब यहां ये वेद भी वही बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, परमात्मा को यहां आना पड़ता है। अब देखो उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। तेजोमय शरीर प्राप्त करके, यानी सुंदर शरीर प्राप्त करके, हल्का दुर्ति माने हल्का तेज का शरीर, भासमान माने यानी तेजोमय शरीर, वह परमात्मा को प्राप्त होता है। फिर उसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। 3 प्रकार से दूसरों की, यानी परमात्मा एक तो कई प्रकार से आता है यहां दूसरे अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए। जैसे एक लीला तो की बालक बनकर प्रकट हो गए, एक लीला की गरीबदास जी को जिंदा रूप में आकर मिले, और एक ऐसा होता है जो कुछ दिन कहीं स्थान पर एक गुप्त संत रूप में रह करके वो चले जाते हैं। उसका न्यों नहीं पता यो कौन संत था, कितना या कई जगह देखा है कि यहां महात्मा रहा करते, यादगार भी बना रखी है, लेकिन कहते वो अचानक आया था, कुछ दिन रह कर चला गया। उसने ये नहीं बताया मैं कौन हूं, कहां से आया। तो जगह जगह कुछ बहुत से ऐसे स्थान है उनका कुछ वैसे गुप्त ही नाम रखा हुआ है। तो ऐसे परमात्मा 3 प्रकार के शरीर में प्रकट होता है। और आगे 9वें मंत्र में लिख रखा है, जब वो परमात्मा बालक रूप में प्रकट होता है तो कुंवारी गायें से उसकी परवरिश की लीला होती है। ये देखो, ये विशेष जानकारी आपको अगले समागम में देंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र 8 आपने पढ़ा कि वो परमात्मा विशेष परिस्थितियां जब हो जाती हैं, गणे भगत दुखी हो जाते हैं उसके, उस परमात्मा को, परमेश्वर परमात्मा को, परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। और वो भासमान शरीर को, परमेश्वर कबीर जी का सबसे न्यारा शरीर था जब मालिक यहां प्रकट हुए, और वह शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। और यहां देखो 9वें में फिर है, 9वें में लिखा है उस सौम्य स्वभाव वाले पुरुष को परमात्मा लिखना चाहिए था। शिशुम कुमार अवस्था में वो बालक रूप में प्रगट परमात्मा को अभी अधन्य, एक तो अधन्य होती है बिना दनाई गायें, यानी एक दो में ब्यारी हो और फिर ना दनाई हो, नए दूध ना हुई हो, अरे एक अभी अधन्य सब प्रकार से अहिंसनीय, सब प्रकार यानी पूर्ण रूपेण कुंवारी गायों गौओं तृप्त करती है। जब वो परमात्मा शिशु माने बालक रूप में प्रकट होता है, इसका अर्थ ये है कि अभी अधन्य यानी बिना कति पूर्ण रूप से, यानी कवारी कभी भी सांड के द्वारा परेशान ना की गई हो, यानी वो छुई भी ना हो, अंटस यानी कवारी, इसका अर्थ ये बनता है, गौवे तृप्त करती है। और 250 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला में जैसा उनके साथ हुआ था वो विद्यमान उनके चरित्र में। गरीबदास जी ने कहा था अनव्यावर को दूहते हैं दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति जा शिव भय दयाल, कि परमात्मा कबीर जी ने वह लीला की थी और वो एक कुंवारी गाय का दूध पिया, जब तक वो बालक रहे वो गाय दूध देती रही, और कुछ समय के बाद दूध कम हो जाता फिर बढ़ना शुरू हो जाता। और ये वर्तमान में भी है, मेरी भतीजी ब्याह रखी है इधर बड़ा गांव में, और उसके आज भी गायें हैं, वह दूध भी लाए थे, हमने मंगाया था, वह आज तक नए दूध नहीं हुई है, और वो दूध देती है। अपने आप दूध उसके थन में दूध आना शुरू हो गया, निकालने लग गए वो पांच पांच छह छह किलो दूध यानी पूरे दिन में और देती है। और जब वर्ष एक हो जाता है थोड़ा सा कम हो जाता है दूध, आधा किलो किलो रह जाता है, और फिर दस एक दिन के बाद वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। आज वो छह आठ नौ वर्ष की होगी, अभी तक भी वो दूध दे रही है। तो ये पहले तो ये बात समझ में नहीं आवा थी, ये नाड़ी आगे नहीं आन दे थे ना, कुंवारी को ऐसे दूध दे दे, और ये प्रमाण रहे आज कितने। तो ऐसे परमात्मा को इन अनाड़ी अज्ञानी ऋषियों और महर्षि संतों ने अपाहज बना के छोड़ रखा था। नो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, नरसिंह जी की हुंडी नहीं ले सकता, द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ सकती, बनावटी बातें थी लोगों की। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, चौदह लोक दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरु जी।